ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्रे ने नई दिल्ली में इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस महानिदेशक ने आज दोपहर युद्ध विराम का आह्वान किया, जिसके बाद चर्चा हुई और यह सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर सहमति बनी है। किसी अन्य मुद्दे पर और किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। श्री मिश्री ने कहा कि सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को फिर से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी बताया है कि भारत और पाकिस्तान गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और व्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारत का यही रुख जारी रहेगा। प्राप्त खबर के अनुसार संघर्ष विराम के तुरंत बाद इसके उल्लंघन की कुछ घटनाएं हुई हैं, हालांकि अब सीमा पर ऐसी कोई घटना नहीं देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। भारत के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को खत्म कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत का लक्ष्य खासतौर पर आतंकी शिविरों और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही सुविधाओं को निशाना बनाना था। कर्नल कुरैशी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया। कर्नल कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने कई झूठे दावे किए हैं। भारत ने फैसला किया है कि भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को देश के विरुद्ध युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में पाकिस्तान की तनाव बढ़ाने की कार्रवाई के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जो दोनों देशों के बीच समझौते के बाद कम हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 5 कुख्यात आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इन आतंकियों में मुदस्सर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, मौलाना मसूद अजहर का निकट संबंधी हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू अक्षा और मोहम्मद हसन खान शामिल है। पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई का भारत ने करारा जवाब दिया है। इसके साथ पाकिस्तान को घेरने के लिए वैश्विक स्तर पर आक्रामक कूटनीति ने पड़ोसी देश को घुटने टेकने पर बाध्य कर दिया। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे के आतंकियों और उनके रक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को इस हमले में मारे गए लोगों का प्रतिशोध लेने का वचन दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान को इस दुस्साहस की कीमत अदा करनी होगी। भारत ने साहसी कदम उठाते हुए पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए व्यापक अभियान ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय नेतृत्व ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराई है। भारत ने किसी भी खतरे का निर्णायक रूप से जवाब देने के लिए तत्परता दिखाई, जबकि राष्ट्र ने आतंकी खतरों को बेअसर करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, भले ही इसके लिए सीमा पार कार्रवाई की आवश्यकता हो। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकरोधी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो अपनी सीमाओं से परे आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गई है। हवाई यातायात नियंत्रण ATC ने देश में सभी हवाई यात्राओं की समीक्षा के बाद हेलीकॉप्टर सेवाओं की अनुमति दी है। इस बीच चार धाम यात्रा में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भागों में तेज हवाएं चलने, बिजली चमकने तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, उपहिमालय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, केरल, माहे, त्रिपुरा, उड़ीसा में गर्म तथा आर्द्र मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूह SSG की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। आज मंगलुरु में नवोदय स्वयं सहायता समूह के रजत जयंती समारोह में उन्होंने इन समूहों के परिवर्तनकारी प्रभाव की प्रशंसा की और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना भी की। श्री गहलोत ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। मणिपुर में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने आज इम्फाल राजभवन में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सामूहिक समर्थन व्यक्त करने और अग्रिम मोर्चे पर सेवारत बहादुर सैनिकों के साथ राज्य की अटूट एकजुटता की पुष्टि करने के लिए एकजुटता बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मणिपुर के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। अमेरिका और चीन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से शुरू हुए व्यापार युद्ध में संभावित नरमी के संकेत हैं। चीनी सरकारी मीडिया ने आज बताया कि उप प्रधानमंत्री लाइफेंग चीन की ओर से वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट अमरीका के मुख्य प्रतिनिधि हैं। श्री बेसेंट ने सप्ताह की शुरुआत में जनता से आग्रह किया था कि वे बैठकों से किसी बड़े व्यापार सौदे की उम्मीद न करें, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वार्ता एक महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका ने अधिकांश चीनी वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर न्यूनतम 145% शुल्क लगाया है और चीन ने अधिकांश अमरीकी आयातों पर 125% शुल्क लगाया है। रसद विशेषज्ञों के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच व्यापार में तेजी से गिरावट आ रही है। यहां तक इस शुल्क दर को आधा भी कम करना व्यापार के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ हद तक सामान्य व्यापार की वापसी के लिए 50% सीमा तय की गई है। कल अमरीका के मुख्य प्रतिनिधि बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर शुल्क को 80% तक कम करने की आशा प्रकट की, जबकि चीन से अमरीका के लिए अपना बाजार खोलने की मांग की। अमेरिका में कम माल आने और आयात पर बढ़ी लागत के संयोजन ने पहले ही अमरीकियों के लिए कीमतों का बढ़ना शुरू कर दिया है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत की मधुरा धामनगांवकर ने आज कंपाउंड वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण के साथ टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीता। मधुरा धामनगांवकर के शानदार प्रदर्शन से भारत ने कंपाउंड वर्ग में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य सहित 5 पदक अपने नाम किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 73 पदक जीतकर महाराष्ट्र लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। महाराष्ट्र ने 27 स्वर्ण 22 रजत और 24 कांस्य पदक हासिल किए। कर्नाटक 14 स्वर्ण 19 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 39 पदकों के साथ अंकतालिका में दूसरे, जबकि 11 स्वर्ण 4 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ राजस्थान तीसरे स्थान पर है। यूरोपीय नेताओं ने आज अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में सोमवार से रूस और यूक्रेन के बीच 30 दिन के युद्ध विराम पर चर्चा की गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने कीव में शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रूस से यूक्रेन में बिना शर्त युद्ध विराम स्वीकार करने का आह्वान किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन और सभी सहयोगी सोमवार से शुरू होने वाले युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मन चांसलर मर्ज और पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क पहली बार एक साथ यूक्रेन की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के सहयोगियों को युद्ध विराम होने से पहले यूक्रेन को हथियार भेजना बंद कर देना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान तथा गुजरात के पश्चिम उत्तर स्थानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित तकनीकी और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को उन्नत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ सिंह ने नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विभागों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक का संचालन करते हुए ये बात कही। ये बैठक मौजूदा सुरक्षा स्थिति के परिदृश्य में देश के प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।